ये श्लोक बहुत बड़ा है, इसलिए इसको आगे दोहराएंगे। उनका शब्दशः अर्थ है कि ये जो व्यक्ति तू, लेकिन यह इस जीवन में वह निस्संदेह पुरुषः व्यक्ति पुरुष मेधेन नरबलि द्वारा यजन्ते आराधना देवी कालिया भद्रकाली की करते हैं, यहाँ जो च तथा स्त्रियः स्त्रियाँ नृपशून बलि चढ़ाने जाने वाले मनुष्य खादंती खाते हैं, तान उनको च तथा ते वे पशवः इव पशुओं के सदृश न्यतः मारे जाकर यम सदने यमराज के धाम में यातयन्तः दंड देते हुए रक्षगणः राक्षस होकर सौनिकः मानने वाले इव ईदृश स्वधीनतिना तलवार से अवदाय खंड खंड करके अश्रुक रक्त पिबंती पीते हैं, नृत्यंती नाचते हैं च तथा गायंती गाते हैं च भी हृष्यमानः प्रसन्न होकर यथा जिस प्रकार यह इस लोक में पुरुष अदाहा मनुष्य भक्षी भाषांतर और तात्पर्य। इस संसार में ऐसे भी पुरुष तथा स्त्रियां हैं जो भैरव या भद्रकाली को नर बलि चढ़ाकर अपने द्वारा बलि किए गए शिकार का मांस खाते हैं। ऐसे यज्ञ करने वालों को मृत्यु के पश्चात यमलोक में ले जाया जाता है, जहां उनके शिकार मारे गए व्यक्ति राक्षस का रूप धारण करके अपनी तेज तलवार से उनके टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। जिस प्रकार इस नरलोक में नरभक्षों ने नाचते गाते हुए अपने शिकार का रक्तपान किया था, उसी तरह से उनके शिकार अब अपने वध करने वालों का रक्तपान करके आनंदित होते हैं। अब 5 श्लोक पढ़ के लेंगे पूरे। एतिवान अनागरसो अरण्य ग्राम्य वा वैश्रम्भ्य कैरव पवृश्रुतानुपशिरसंभ्य जिजी विशुन शूलशत्र दिशुपप्रोत्र क्रीडान्न कथया यातन्ति तेऽपि च प्रत्ययमतानासु शूलादिषु प्रोत्तमाना श्रुतृभ्यः चाभिहतां कङ्कवटाधिभिश्च तिष्ठसि तिस्तमणतुण्डैर्हान्यमाना आत्मशमलं स्मरन्ति। इस जीवन में कुछ व्यक्ति गांव या वन में रक्षा के लिए आए हुए पशुओं तथा पक्षियों को शरण देते हैं, और उन्हें अपनी सुरक्षा का विश्वास हो जाने के बाद उन्हें बर्छे या डोरे में फांसे कर घोर पीड़ा पहुंचा कर उनसे खिलौने जैसे खेलते हैं। ऐसे व्यक्ति मृत्यु के पश्चात यमराज के दूतों द्वारा शूलप्रोत नामक नरक में ले जाए जाते हैं, जहां उनके शरीर को तीक्ष्ण नुकुले भालों से छेदा जाता है। वे भूख तथा प्यास से तड़पते रहते हैं, और उनके शरीरों की गिद्ध तथा बगुले जैसे तीक्ष्ण चोंच वाले पक्षी चारों ओर से नाचते हैं। इस प्रकार से यातना पाकर उन्हें पूर्व जन्म में किए गए पाप कर्मों का स्मरण होता है। एतिह वै भूतान्य द्विजयन्ति नरा उल्बन स्वभाव यथा दंदशुकास्ते प्रेत नरके दंदशुकाप्य निपतन्ति तयत्र रूपा दंतशुका पंचमुखा सप्तमुखा उपसंति ग्रसंति यथा बिलेशयान। जो व्यक्ति इस जीवन में ईर्ष्यालु सर्प के समान क्रोधी स्वभाव वाले अन्य जीवों को पीड़ा पहुंचाते, वे मृत्यु के पश्चात दंत दशुक नामक नरक में गिरते हैं। हे राजन, इस नरक में 5 या 7 फन वाले सर्प हैं, जो इन पापात्माओं को उसी प्रकार खाते हैं, खा जाते हैं जिस प्रकार चूहों को सर्प खाते हैं। ये त्वहवा अंधवाट कुसुलु गृहादिशु भूतानि नुरुंदते यथामृत त्वेषोपविश्य सगरेन वन्यना धूमेन नुरुंदति। जो व्यक्ति इस जीवन में अन्य जीव को अंधे कुएं, खत्ती या पर्वत की गुफाओं में बंदी बनाकर रखते हैं, वे मृत्यु के पश्चात अवट निरोध नामक नरक में रखे जाते हैं। वहां वे स्वयं अंधे कुओं के धकेले दिए जाते हैं, जहां विशेल धुएं से उनका दम घुटता है और वे घोर यातनाएं उठाते हैं। यस्ति वा अतिथि अतिथिन भ्यागतान वह गृहपति रस क्रुदुप गतन्न मृदु दिद क्षुरिव पापेन चक्षुषा निरीक्षते यस्य चापि नरे पाप दृष्टे रक्षिणी वज्र तुंडा गृध्रा कंकाक वटादया प्रसयोरु बलाद्युत्पाटयंती। जो गृहस्थ अपने घर आया अतिथियों को अभ्यंगतों को क्रोध भरी कुटिल दृष्टि से देखता है, मानो उन्हें भस्म कर देगा, उसे पर्यावर्तन नामक नरक में ले जाकर रखा जाता है, जहां उसे वज्र जैसी चोच वाले गीद बगुले कौवे तथा इस प्रकार के अन्य पक्षी घूरते हैं और ससा झपट कर तेजी से उनकी आंखें निकाल देते हैं। इस तात्पर्य वैदिक शिष्टाचार के अनुसार यदि गृहस्थ के घर उनका शत्रु भी पधारे तो उसे ऐसी विनम्रता से मिलना चाहिए कि वह भूल जाए कि वह अपने शत्रु के घर आया है। घर आए अतिथि को विनम्रता पूर्वक स्वागत करना चाहिए। यदि वह वांछित है तो गृहस्थ को चाहिए कि उसका घुरे नहीं, क्योंकि जो ऐसे करता है वह मरने पर पर्यावर्तन नामक नरक में रखा जाता है, जहां गीत कौवे जैसे अनेक भयानक पक्षी उस पर ससा टूट पड़ेंगे और उसकी आंखें निकालेंगे। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजलशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरौ श्रीतपदकमलं श्रीगुरुनवष्टवां च श्रीरूपं साग्रजातं सगन रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता विशाखान्वितां च। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशगोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतिदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। अभी ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम नारकीय लोकों का वर्णन स्कंद पांच में इसका जो वर्णन किया है, तो ये एक क्लास हम बहुत 2004 में रूपरंगपुर से क्लास सुना था अम्बिस्ता में, पूरे 28 नरक का वर्णन इसमें किया था। तो उस समय हमें सगे था कैसे सजा होती है, तो पूरे रोमांच खड़े हो जाते और हमारा पूरा जीवन का कुंडली याद आते पिछले क्या क्या किया है और हमें क्या क्या मिलने वाला है। तो सबको ऐसे ये देख कर, पहले तो खुद को डर लगता है, अरे क्या क्या किया मैंने और मुझे क्या क्या मिलने वाला है। तो इसी तरह से यहाँ बहुत ये बारंबार पढ़ना चाहिए एक्चुअली। ये जो नारके से वर्णन करेंगे तो पढ़ेंगे तो हमें कुछ पाप करने से हमें बहुत कुछ डर लगेगा। जैसे कि मुरुगारी का तो कथा आता है, उसने तो स्वयं नारद मुनि उनको पूरा पिक्चर दिखा दे, आपने कैसे कैसे किया, कैसे कैसे मार, एक एक पशु को मारते आधा मारकर छोड़ देते, आधा मारकर छोड़ देते। तो जब नारद मुनि देखते हैं, कम से कम नारद मुनि उनसे कहते इनको पूरी तरह से मार दो, लेकिन ऐसे तड़पते तड़पते उसको मत रखिए। तो उनको ऐसे लगता है क्या, तो नारद मुनि उनको पूरे जीवन का दिख रहा है आपको कैसे कैसे शिक्षा मिलने वाला है। तो ये देखकर मुरारी और उसके बहुत परिवर्तन होता है। नारद मुनि स्वयं भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनके कृपा से उनके पूरे परिवर्तन आ जाता है। और बाद में जब बहुत साल के बाद वापस नारद मुनि और पर्वत ऋषि उनको मिलने आते हैं, तो वो मुरारी ऋषि कैसे ऐसे नाचते इधर उधर ऐसे सीधा दौड़ के नहीं आते, थोड़े ऐसे क्यों दौड़ते आते हैं, तो नहीं वो उधर से चिटिया जा रहती है और चिटिया जाते से उनको बचाने के लिए ऐसे। तो जब ऐसे वो पूरा हम देखे तो हम एक चीटी को मारने के लिए हम ये हो सकते हैं। तो इसीलिए हमें वो बहुत डर लगता है कि कैसे उसको कैसे मार सकते हैं। तो प्रभु जी का आशीर्वाद, रूपान प्रभु जी की जय। तो प्रभु जी के वही अंबिस्ता में बता रहा था, पहले हम अंबिस्ता में प्रभु जी 28 नरक का वर्णन का पूरा सुना था, तभी इसमें वही है दिख रहा है कि तो वही अभी जो मुरारी ऋषि है उसमें कैसे परिवर्तन हो जाता है एक एक पाप से उनको बचने के लिए। तो ये हमारा साधु के संग से एक परिवर्तन सब आ जाता है। तो यहाँ लास्ट में ये जो ऐसे बताया कि बहुत सारे लोग हमें बताते हैं कि जुओ जुओ से जीवनम, एक जीव दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं और कुछ भी हमारा ये बिजनेस रहता है तो इसके लिए हम कर सकते हैं, तो उसको बोल सकते हैं। ये तो हमारा कभी कभी मैं बाहर एक बार गया था एक ऐसे में मायावती उधर, तो वो बता रहे थे निराकर बातें भी बोल रहे थे और बोल रहे थे कि ये तो हमारा शरीर का खाद्य है, आत्मा खाद्य अलग है, आत्मा का लेवे करना है तो शरीर का खाद्य है। तो वो ऐसे गया था एक ग्रुप के साथ में ऐसा, और वो जैसे कि यात्रा गए और उधर देखा तो दूसरे सब उसने जो नॉनवेज था उसमें सब, तो देख के बोले ऐसे कर नहीं बोलते अपना ये शरीर का खाद्य है और आत्मा का खाद्य भगवान का नाम भजन नहीं करेंगे हम। तो मिला रे बाप रे मैं कौन सी जगह पे आ गया, वहां से मैं बोले इसके बाहर कभी इसके इनके ग्रुप में आना नहीं। तो ऐसी तरह से ऐसे होता है, तो उधर चल रहा है तो समझना चाहिए कि तो इसको ये बता सकते हैं कि कहाँ से उनको कैसे अलग अलग नरक का वर्णन या जो उनको कहते आदि यहाँ बताते कि उनको कैसे अच्छी तरह से कुछ पशु पशु पालन करते हैं और बाद में उसको क्या करते हैं उनको फंसा कर उनको बाहर से उसको मार कर उनको खुद खा जाते। तो ये हमारा इसमें आता है कि जैसे हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को मुर्गियों को पालते हैं, भेड़ को पालते हैं, तो उनको मारकर बाद में क्या करते हैं एक कसाई को भेज देते हैं। हमने गैया को ऐसे मारकर उसको कसाई को भेज देते हैं। तो इसी तरह से उनको ये नरक का इधर वर्णन करते कि आप कि जो उनको शूलप्रत नामक नरक में जाकर उनको उसी शरीर को तीक्ष्ण नुकीले भालों से छेदा जाता है। तो ऐसे किसी भी जो भी कुछ करते उसके लिए भी उसको दिया शिक्षा दिया है यहाँ। और दूसरी कुछ ऐसे कहते कि या ये भी वर्णन है कि जैसे कुछ बोलते कि हमारे देवी तो देवताओं को नर बलि आप पशु का बल करते या उनको मारकर उनको देवताओं को लगता है किसी देवी देवता को या उधर हमारे कुल देवताओं को लगता है, तो उसके लिए भी यह शिक्षा दी है कि उसको भी ऐसे करते तो उसको भी यहाँ उनको भी यहाँ जो भैरव और भद्रकाली नर बलि चढ़ाकर उनको द्वारा किया शिकार किया जाते ऐसे लोगों को उनको यमलोक लेके जाता है और वहां उनको राक्षस द्वारा रूप तलवार से उनके टुकड़े टुकड़े कर जाते हैं। ऐसे वो नरभक्ष नाचते नाचते उन शिकार उनको रक्तपान किया तो उसी तरह से उनको भी वो रक्तपान का आनंदित किया जाता है। तो ये सारा उनको यह शिक्षा दिया है। और इसी तरह से हमें यहाँ से कैसे कैसे लोगों से बचना चाहिए, कैसे कैसे पापों से बचना चाहिए, या पूरी तरह से यहाँ शिक्षा दिया है ये नरक में। तो सबसे बड़े तो अभी तो बहुत सारे कुछ पाप होते हैं, तो यहाँ से बचना कैसे चाहे उसके लिए। तो यहाँ लास्ट में जो तात्पर्य ने बताया 35वें श्लोक में कि हमारे यहाँ तो गृहस्थ तो जो हमारे घर में अतिथि आता है तो उसको हम कैसे स्वागत करना चाहिए, उनको जब हम उनको उनको निग्लेक्ट करेंगे, दुर्लक्षित करेंगे, या तो उनको स्वागत तो करेंगे नहीं और उसको क्रोध क्रोधी से देखेंगे, तो वहां से उनको कैसे हम कभी कभी देखते हैं, हम किसके घर में जाते हैं तो ऐसे देखते हैं तो उनको जैसे कि हमें भस्म कर रहा है, तो ऐसे लोगों को पर्यावर्तन नामक में नरक में डालते हैं और उनको जाकर रखा जाते हैं। और चोच वाले गीत बगुले तथा कौवे प्रकार उसी अन्य गुणित के उसको झपट कर उनकी आंखें निकाल देते हैं। तो ऐसा देखा तो तुम सबसे पहले मुझे याद आ गया, अरे यहाँ हमारे बहुत सारे गेस्ट आते हैं, अतिथि आते हैं, कभी कभी हम भी उनको उस दिन रोकने के लिए हम गए थे तो 2-3 बार हमसे भी झगड़ा हो गया था। तो मैं शाम को अजित मुकुंद से बोला, प्रभु जी ये बहुत कठिन सेवा है और ऐसे रोकने से, और वो मुझे ऐसे बोला भी, वो सीधा बोल दिया आप मेरे तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं। तो बाद में मुझे लगा अरे मैं ऐसे क्यों देख रहे, तो अरे और ये पढ़ा तो मुझे समझ आया, अरे बाप रे हम तो बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। तो यहाँ से समझने वाले कि कोई भी हो, यहाँ तो कोई भी हमारे इतना है तो ये तो प्रभुपाद कर यहाँ भगवान के अतिथि, ऐसा समझ कर हम व्यवहार करना चाहिए। तो उस दिन और अजित मुकुंद प्रभु जी में भी बोले कि ये ऐसा, मैं भी उसको डांटा तो मुझे पूरा दिन मेरा खराब हो गया, हमें भी मुझे अच्छा नहीं लगा प्रभु जी ये सेवा, ऐसे नहीं हम प्रेम से बोलना चाहे तो उनको जा सकते हैं। तो वहां से हर तरह का हम जो भी कुछ अपराध करते हैं, और ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, कोई भी हमारे घर में आता है, अतिथि आता है, तो उनको प्रेम से स्वागत करना चाहिए, तो कड़क तेज नजर से क्रोध भाव से तो देखना ही नहीं चाहिए, तो उसके लिए तो बहुत बड़ा हमें शिक्षा हो सकता है ये बताएं। और हम या अतिथि के सिवा में एक बार संकीर्तन प्रभु जाए थे, संकीर्तन प्रभु उन्होंने हमें पूरा बहुत अच्छा क्लास दिया था कि जो अतिथि उनको हमेशा हम स्माइल करना चाहिए, उनको स्वागत करना चाहिए, और कभी कभी फोन से बात करेंगे, फोन से भी इतने हम मीठी बात करेंगे, उनको प्रेम ऐसा लगना चाहिए। तो यहाँ से हम कभी कभी जो बात करते फोन से बात करते या किसी को स्वागत करते तो ये नहीं करेंगे तो उनको बहुत बड़ा गलत फहमियाँ भी होते और उसके आगे लिए शास्त्र में या शिक्षा भी बताए, तो यहाँ से वो हम देख सकते हैं। तो हमारा हमेशा देखते हैं हमारे गुरु महाराज या भक्तगण कैसे स्वागत करते हैं, तो हमारा या जो इस्कान का जो प्रचार चल रहा है, हमारे मंदिर का प्रचार चल रहा है, तो ये हमारा ये गुरु महाराज का प्रपद का जो और हमारे जो सारे वरिष्ठ भक्तों ने दिया हुआ जो सिस्टम है इसके द्वारा ये प्रचार हो रहा है, उनके आशीर्वाद से इसे तो लोग बढ़ रहे हैं, हमारे प्रेम से यह सब आते हैं, तो कितने अच्छी तरह से भक्तगण कहते हैं कैसे आप व्यवहार कर रहे हैं सबके साथ, इसीलिए इधर सब लोग आते हैं बहुत प्रसन्न होते हैं। इधर आप आते हैं या कुछ नामे पार्किंग का भी चार्जेस नहीं, मंदिर में प्रसाद की भी चार्जेस नहीं, और सब प्रेम से बात करते हैं, इसी व्यवहार से सब लोग आते हैं, तो सबको यह हमारा बहुत कृपा है हमारे गुरु महाराज का और सारे वैष्णवगण का अतिथि का यह स्वागत करते हैं। यहाँ से तो यहाँ से हम देखते हैं शास्त्र में कि कभी कभी तो भगवान भी या दुर्योधन के एक बार दुर्योधन भगवान कृष्ण स्वयं शांतिदूत बनकर जब दुर्योधन और सारे कौरवों को समझाने गए थे तो वहाँ भी हम देखते कि दुर्योधन ने बहुत अच्छे से जो दुशासन का बहुत बड़ा महल उनको दिया था और उनके लिए बहुत अच्छे भोग बनाए थे अच्छे तरह से, लेकिन वो भगवान कृष्ण की बात नहीं मान रहे, भगवान जो बोल रहे उसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं हो रहे, कि 5 गांव में मांगे वो भी नहीं तैयार है, तो सुई के नोक के ऊपर जमीन बैठी के वो भी देने के लिए तैयार नहीं है। इसी तरह से ऐसे वहाँ और स्वयं वो भगवान कृष्ण भी बंदी बनाना चाहते हैं। इसी तरह से वो अतिथि का क्या करते हैं, और जो अतिथि उनका स्वागत तो करना दूर, और उनको इसी तरह से हमें शिक्षा देते हैं, इसके इसको इसी तरह से गलत ढंग से उनको व्यवहार करते हैं। तो ये करना कितना बड़ा अपराध है। और इसी तरह के हम रुके नहीं, भगवान कृष्ण दुर्योधन का भोगने भागो रुक साक विदुर खायो, ऐसे प्रेम उपदेश राधे श्याम श्याम श्याम। तो उसी तरह से हम जहाँ प्रेम है वहाँ हम जाना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ हम व्यवहार न करने से वहाँ से भगवान कृष्ण स्वयं वहाँ से ये करते हैं। तो अतिथि देवो भो, और भगवान सारे भक्तगण या तो हमारे घर पे जो भी आते थे, तो शत्रु भी आ जाए तो उनके भी ऐसे व्यवहार करना चाहिए, वो भी पूरी तरह से खुश हो सकता है, प्रसन्न हो सकता है। इसलिए ये बताएं कि हम ऐसे करना चाहिए। तो ऐसे नरक में तो या बहुत ऐसे उदाहरण दिए, और जो तुकाराम महाराज एक अभंग में कहते हैं, बहुत सारे ऐसे नरक तो है पूरी, इससे बचना कैसा है, तो एक पांडुरंगा श्री रंगारे भजोरे मना, अमूल्य के जाते वही अथा तरी धरिबास हो, ऐसा मानव देह यही नपना। तो यहाँ हम भगवान का कृष्ण का भजन करना चाहिए, उनका भक्ति करना चाहिए, उनको मन को बारंबार मन में भगवान का पूजा करेंगे, मन मना भो मद भक्तो। तो इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये मनुष्य जन्म जो बहुत मूल्यवान मिला है उसको हम क्या कर सकते हैं, या से उसका उद्धार कर सकते हैं, उसको जैसे इस नरक यातना से या जो भी शिक्षा हम किया है वो यहाँ से हम कैसे कर सकते हैं, धीरे धीरे यहाँ से अब बाहर निकल सकते। इसीलिए बारंबार ये मन को बताना चाहिए, उसको भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, ये उसके लिए भजना है। और अमूल्य का जाते हुए अता तरी धरी सब बहस हो, तो अभी जो जितना हो गया हो गया, लेकिन अभी तो हम सुधरना चाहिए। और ऐसे मनुष्य जन्म हमें बार बार नहीं मिल सकता है, दुर्लभ मानव जन्म, ये मनुष्य जन्म बारंबार नहीं मिलता है। तो ऐसे हम करोड़ों करोड़ों जन्म अलग अलग योनि में फंस रहे हैं, 84 लक्ष योनि में घूमते घूमते कभी तो हमें एक बार अभी मनुष्य जन्म मिला है। और एक योनि में कोटि कोटि, एक एक योनि कोटि कोटि फेरा तेवा कुटे लागे वारा मानवाचा, एक एक योनि में कोटि कोटि बार हम जन्म लिए हैं, तो दुर्मिल से अभी हम एक मनुष्य जन्म मिला है, और वो मनुष्य जन्म भी मिला है, तो इसका हम क्या करना चाहिए इसको। और ऐसे भी ये मनुष्य 4 लक्ष योनि में मनुष्य जन्म में अलग अलग देश में या अलग अलग ग्रहलोक में हमें जन्म मनुष्य जन्म मिलेगा, तो उसको तो भी हमें कुछ लाभ में नहीं मिल सकता है। तो अलग अलग देश में जाएंगे तो वहां भी मनुष्य जन्म उसके उसका वैल्यू उसका महत्व तो समझ नहीं सकते हैं। और उसी तरह से हमें ये जन्म भी इस भारत देश में मिला है। तो भारत देश में एक श्लोक में आता है कि वहां बताया कि भारत में जन्म लेने के लिए भी एक जीव को 100 जन्म अलग देश में पुण्य करना पड़ता है, उसके बाद में उनको भारत में जन्म मिलता है। तो 100 जन्म पुण्य करने के बाद भारत में जन्म मिलता है, तो कितना दुर्मिल है या भारत में भी जन्म मिलना है। इसलिए तो हम, और यहाँ से भी भारत में जन्म मिला है तो भी हमारे भक्तों के संग मिलना वो भी बहुत दुर्लभ मिलता है। तो चैतन्य महाप्रभु यही कहते, भारत में जिसको भी मनुष्य जन्म मिला है, भारत जन्म है मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। जिनको भी भारत में जन्म मिला है उन्हें अपना जन्म सार्थक करना चाहिए, हाँ, और कर परोपकार, और दूसरों को भी उपकार करना चाहिए, दूसरों के भी इस भगवान के भक्ति में जोड़ना चाहिए, उनको भी जागृत करना चाहिए। तो यहाँ भारत में जन्म मिलने का तो ये कितनी दुर्मिल से मिला है, और इसीलिए हम यहाँ से कोई इतर ऐसे नहीं आ सकते हैं। कभी यहाँ बहुत सारे भक्तगण आते हैं तो उनको पूछा था मैं, बीच बीच में पूछता हूँ, आप यहाँ आने के लिए आपको कितना समय लग गया? वो बोलते मुझे 2 घंटा लगा, मुझे 3 घंटा लगा, सुबह से आ गया। तो उनको बोलते ये ले, करोड़ों करोड़ जन्म लगे इसीलिए आज पहुंच गए। तो आपने शायद बहुत सुकृति किया होगी, इसीलिए आपको यहाँ आए तो बहुत महत्वपूर्ण समझ के ले लो और गंभीरता से ले लो। तो ऐसे नहीं हो सकता है ये तुरंत हमें मिल जाएगा, तभी मिलता ही नहीं। इसके लिए बहुत तपस्या की हमने, बहुत कष्ट लिए, इसलिए अभी मिल गया है। तो भी ऐसे हम उसको फेंकना नहीं चाहिए, जैसे हमको हीरा मिला है लेकिन काज समय उसको फेंक दे रहे, पत्थर समय उसको फेंक दे रहे। तो उसी तरह से ये मिला है, ये बहुत दुर्मिलता से मिला है। और सही में हमें याद दिख रहे जो हमें जो मिला है उसका तो हम कल्पना भी नहीं सकते, प्रभुपाद का और गुरु महाराज का और सारे वैष्णव की कृपा से। इसको हम हर दिन यहाँ घूमते हैं तो यहाँ समझ में आता है। बहुत सारे कुछ लोग आते हैं ऐसे निकल के जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे आते हैं वो ऐसे परिक्रमा करते देखते देखते उनको आंखों से निरंतर अश्रु की धारा बहती है। ऐसे वहां से वो रोते हैं सीधे, उनको हमें लगता है उनको क्या साक्षात हो गया, ऐसे लगता है। हमें भी इतना समझ में आता है, लेकिन उनको समझ में आता है कि हाँ कुछ तो अलग जगह है, कुछ तो ऐसे इधर है, इधर जो उनको मिल रहा है तो प्रभुपाद की कृपा से बन गए। इसलिए उनको अभी बताते कि ये जो धाम है स्वयं प्रभुपाद की इच्छा थी इसलिए बन गया। हाँ, अब उसी श्रद्धा भक्ति भाव से गुरु महाराज यहाँ उन्होंने स्थापन किया है, उसी श्रद्धा भक्ति भाव से यहाँ सारे भक्तगण उसकी पूजा पाठ करते हैं। तो ये सब बहुत दुर्मिलता से मिला है, तो या वही उसका गंभीरता से लेना चाहिए। नहीं तो हम यहाँ बहुत सारे कुछ इंद्रिय तृप्ति कर्म में जुड़ जाएंगे, बाहर की अमूल्य के जाते हुए आता दरिभास हो, और रात्र दिवस करीसी मजा के वाई लिए महाराजा नील तुझे प्राण यम सदना। तो कर महाराज वही कहते कि अभी हम बहुत मौज मजा करेंगे और जो भी इंद्रिय तृप्ति को मजा लेंगे, और अंत में उसको क्या होगी यम सदन, यम उनको लेके जाने वाले। तो अभी मजा करेंगे, बाद में यमराज उनको जरूर यमलोक में लेके जाने वाले और उनको शिक्षा करने। तो ये नरक का वर्णन किया है, इसको शिक्षा दी जाती है। तो इसीलिए तुकाराम महाराज लास्ट में कहते कि तुकाम ने एक करा हरिचरण दृढ़ धरा सुटेल 84 से फिरा तुझिया प्राणा। तो अभी यही करना है कि हमें जो हरि के चरण वो दृढ़ता से लेना चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए। भगवान का नाम रूप गुण लीला उनको गंभीरता से लेना चाहिए, उनको एक एक भगवान का नाम का उच्चारण करना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए, और गुरु के चरण के आश्रय लेना चाहिए। भगवान के चरणों के आश्रय लेंगे तो इससे हम बच सकते हैं, तो यहाँ से सहायता मिल सकते हैं। तो यहाँ तो भी हम इस नरक यातना से और 84 लक्षणों से मुक्त हो सकते हैं। तो हम अभी तो भक्ति कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, प्रयास कर रहे हैं सब। तो भी प्रभु जी ने एक क्लास में रात को बताया कि जो जगन्नाथ जी के भक्त थे माधव भक्त, वो उनको हर दिन पूजा करते थे उनको, बाद में वो बहुत बीमार पड़ते हैं। तो स्वयं जगन्नाथ जी उनको जाकर सुपुरे से बेड पे ही सब उनको जो सब उनको यूरिन पास और लैट्रिन सब पास उधर होता था, तो उनको पूरी तरह से भगवान स्वयं उसको क्लीन करते। तो भगवान उनको सब उनको बोलते आप इतना मेरे सेवा क्यों रहे, भगवान आप ऐसे क्यों कर रहे हैं। लेकिन बोलते आप चाहे तो यहाँ से मुझे मुक्त कर सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ हमें सीख मिलता है कि हम जब तक इस भौतिक जगत में या तो भक्ति भी कर रहे हैं तो कुछ हमारे भगवान क्या करते हैं इस जो प्रकृति के नियम है, या तो उनको जो है हमें क्या करना है थोड़ा सा शिक्षा आ जाएगा, थोड़ी सी हमें जो हमारे पाप के कर्म है वो स्वयं धुलाने के लिए वो आ सकते हैं। भगवान हमें मदद करेंगे, सबसे बड़ा क्या है हमारे साथ भगवान रहेंगे, हमारे साथ भक्तगण रहेंगे, तो उनको उनके लिए शक्ति का प्रयास मिल सकते हैं। तो हम यहाँ से कभी हम बोलेंगे हम इतना भक्ति कर रहे हैं आप लिखा है, लेकिन हमें उनका पूरे नष्ट नहीं हो रहे तो नहीं, जब तक भगवान हमें साथ रहेंगे तो भी या हमें थोड़ा सा ऊपर नीचा हमें थोड़ा सहन करना पड़ेगा, तो लेकिन हमारे साथ भगवान रहेंगे तो इसके हम डरने की जरूरत नहीं, हमारे साथ भगवान भक्ति के प्रयत्न लेंगे। तो सहन करना है शिक्षा है। तो यहाँ से हम वही शिक्षा दे गया हूँ कि बहुत सारे अपराध नहीं करना चाहिए, वैष्णव के साथ तो बिल्कुल अपराध नहीं करना चाहिए, और जो हमारी जो भी भक्त आता है, कोई भी गेस्ट आता है, उसको भगवान के आती समझकर उनको हम स्वागत करना चाहिए। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। थैंक यू सो मच।
हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी एक ना एक वारकरी भक्त ने हमको बोला, भक्त मतलब वो मांत्रिक जैसा था, वो बोला कि आपकी जगह में थोड़ा प्रॉब्लम है, उसके लिए आपको एक कोंबड़ी छोड़ना पड़ेगा। हम बोला हम तो ऐसा कुछ करते नहीं। वो बोले उसको मारने का नहीं, उसका केवल पंख निकाल के छोड़ देने का और उसको जाने देने का। तो ये इसका भी वही पाप लगेगा कैसा है?
वो जो तांत्रिक रहते हैं उनका एक सीमित स्टडी रहता है, सीमित अभ्यास रहते हैं अलग अलग तरह से, तो वो उनके ज्ञान से सबसे देखता है उसको क्या करने, उसको इसका जो ऊपर का ज्ञान है उसे क्या परे होगा तो वो समझ में नहीं आते। जैसे कर्मकांड के नियमों के अनुसार अलग अलग तरह से हम देखते हैं उनको क्या क्या, उनको विधि विधान ऐसे रहते हैं। जैसे हम भगवत गीता के शंकरो नरकाय कुलग नाम न कुलस्य पतंती पितुरेशा लुप्त पिंड उदक क्रिया, कि हम जो जो एकादा हमारा घर में जो बाद में कृष्ण अर्जुन कहते हैं सारे पुरुष मरने के बाद उनको जल अर्पण के लिए पिंडदान अर्पण कोई नहीं रह बचेगा, तो इसीलिए उसके लिए करना जरूरी है। जो तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं कि जो वैष्णव है भक्त है उनको ये क्रिया करने की जरूरत नहीं, ये करना जरूरी है ऐसे दिखते हैं, लेकिन उसको ये क्रिया करने की जरूरत नहीं क्योंकि भगवान के भक्त उनसे परे जाते हैं उनको। लेकिन हम ये इसीलिए करते कि जो बाकी समाज को आदर्श दिखाने के लिए ये हम क्रिया उनको करते, उन्होंने ये छोड़ना नहीं चाहिए। और इन्हें तो पता है मुर्गी वगैरह छोड़ना, इसके लिए तो बताए नहीं, उनको ऐसे भी छोड़ना है, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि उसको छोड़ने की जरूरत ना, सो तो भगवान के। और उसका उसके बता दे कि यहाँ जो पशु पक्षी जो उसको लिए बनाए उसका अलग अलग तरीके से बनाया गया। जैसे हम गौशाला में भी मुर्गी रखा है तो बोले तो पहले से हम मुर्गी रखा है कोई बात नहीं, तो छोड़ने की जरूरत नहीं। और वो भी किसी लिए रहता है, जैसे कि बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं उसको खाने के लिए वो रखते हैं, तो उसके लिए वो रखा है। और ये जो है उनका जैसे प्राइमरी जो पहली क्लास में पढ़ता है उसका स्टडी अलग रहते हैं, 10th क्लास में अलग रहते हैं, तो डिग्री के अलग रहते हैं, तो उसी तरह से उनका इतना ही सीमित है, उनके लेवल के अनुसार वो हमें बता रहे, तो इसे वो जरूरत नहीं, कुछ ऐसे करने की जरूरत ही नहीं। हरे कृष्ण। प्रभु जी से पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।